الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 146 سے آغاز کر رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حق کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ وہ حق کو جانتے ہیں۔ آتیناہم الکتاب، یہ یاد رکھیے کہ جہاں پہ اوت الکتاب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے لوگ زیر بحث نہیں ہیں، اور آتیناہم الکتاب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے لوگ بھی زیر بحث، یہود میں سے اچھے لوگ، کیونکہ وہ جو ہے وہ مجھول کا صیغہ، جن کو کتاب دی گئی، اور یہ ہے جن کو ہم نے کتاب دی، تو ہم نے کتاب دی میں ذرا محبت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو فرمایا جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کس کو پہچانتے ہیں؟ اس میں مفسرین کے ہاں اختلاف ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکم بیت اللہ کے بارے میں آیا کہ وہ قبلہ ہے، وہ مطلب ہے کہ وہ قبلے کی تبدیلی کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، بالکل ان کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ ہی اللہ کا گھر ہے اور یہی قبلہ ہے۔ ایک یہ معنی لیے گئے ہیں، دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں قرآن مجید کے، کہ وہ قرآن مجید کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تیسرے معنی لیے گئے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیچھے ایک انہ الحق آپ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 144 میں، تو وہ قبلے کی تبدیلی ہی کے لیے وہاں بولا ہے کہ قبلے کی تبدیلی یعنی بیت اللہ کا، بیت الحرام کا قبلہ ہونا یہ حق ہے، اسی کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ بہتر یہی لگ رہا ہے، کیونکہ یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نہیں ہے بلکہ یہ مقام اس بات کا ہے کہ قبلے کو منوایا جائے۔ تو قبلے کے اس معاملے کو وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری تاریخ مکہ میں، مدینہ میں سب لوگ جانتے تھے کہ یہ گھر انہی کا بنایا ہوا ہے، اس میں قربانی ہوتی ہے، قربان گاہ ہے، حج ہوتا ہے، اور حج کے بارے میں تاریخ میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے حج کے لیے بلایا ہو سوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں واضح تھیں جن کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے، تو اس لیے وہ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ البتہ یہاں چونکہ یعرفون ابناءہم کا لفظ ہے تو اس لیے شخص کی طرف ذہن جاتا ہے، تو وہ صرف مثال دی گئی ہے کہ ان کے پہچاننے کی وضاحت کس قدر ہے، یعنی وہ اتنا ہی اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں جتنے اچھے طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ البتہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو اس حق کو چھپا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تو نہیں چھپا رہے تھے، دراصل بیت اللہ ہی کو چھپا رہے تھے، اور اس کے حوالے سے پیچھے جو باتیں گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں یہ ادھر ذہن جاتا ہے۔ تو لوگ جو تھے وہ چھپا رہے تھے اس حق کو، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اب اس بات کو کہنے کے بعد جو اگلا جملہ بولا گیا ہے وہ بھی اسی بات کو واضح کرتا ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات مسلمانوں کے بیچ میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہود کے علماء یہ کہیں کہ نہیں نہیں ہماری کتابوں میں تو کسی خانہ کعبہ کا ذکر نہیں ہے، کسی ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو پرانے زمانے سے جانتے ہیں اس بات کو، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس تو سنی سنائی تاریخ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس بات کو پھر سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ الحق رب کا، الحق من رب کا فلا تکونن من الممترین، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ یہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، نہ کہ یہود کو نہ کہ صحابہ کو۔ تو اس کے वाज़े मतलब है कि उस चीज़ ही के बारे में बात हो रही है जिस चीज़ में कुरैश यहूदे मदीना जो थे वो बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी किबले की पैरवी कर रहे थे जिस किबले पर यहूद थे, इस वजह से ये मामला वाज़े तौर पर था कि अभी आप तो उस किबले पर थे, अभी आपने छोड़ दिया। और आगे चलकर एक और बात होगी जिसमें ये भी वाज़े रहना चाहिए कि जो यहूद थे वो मगरब को किबला बनाते थे और जो नसारा थे वो मशरक को किबला बनाते थे, यानी दोनों उलट थे एक दूसरे के। अगर यहूदी इधर मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं तो नसारा इधर मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे। जो किस्मत की बात है या इत्तेफाक की बात है कि मदीना के लोगों के लिए बैतुल मक़दस भी तकरीबन मगरब ही में पड़ता था, यानी वो बनेगा शुमाल मगरब बनेगा, तो वो ऐसे लगता था कि जैसे वो मगरब की तरफ मुँह नहीं कर रहे बल्कि बैतुल मक़दस की तरफ मुँह कर रहे हैं। तो इससे एक, और ये मुमकिन भी है कि वो जैसे हमारा, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा भी किबला मगरब की तरफ है, तो अब अगर कोई आदमी यहाँ से जाए और उसको बताया जाए कि तुमने फ्रांस में जाकर मशरक़ की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़नी, तो उसको अजीब लगेगा। हालांकि उसका, हम मुसलमान चूँकि वाज़े हैं कि बैतुल्लाह की तरफ करते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सा लगता है, अच्छा आज मुझे मशरक़ की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़नी। तो उनके यहाँ तरद्दुद ये था कि मशरक़ और मगरब की बहस है कि बैतुल मक़दस की बहस है कि बैतुल्लाह की बहस, ये वहाँ पर गलतफहमी थी। और चूँकि ईसाइयों ने तो ख़ास तौर से मशरक़ बना लिया था तो उनका मगरब था, तो अरब के इलाक़ों में कम अज़ कम ये बात वाज़े है कि इनके यहाँ मशरक़ और मगरब की बहस हो गई हुई थी, बैतुल्लाह और बैतुल मक़दस की बहस नहीं थी। तो यहूद के लिए ये बात मानना भी मुश्किल था कि किसी घर की तरफ रुख किया जाए, उनके तो जहन में था कि मशरक़ या मगरब, बस ये उनके जहन में था कि हमने मगरब की तरफ मुँह करना है, और नसारा कहते थे कि हमने मशरक़ की तरफ मुँह करना है। तो सिमत इसलिए बार बार अल्लाह ताला ने कहा है कि ये ना समझो कि मशरक़ और मगरब अल्लाह के हैं, तो जहाँ भी तुम होगे वहीं अल्लाह ताला होगा, ये बता दिया अल्लाह ताला ने समा वजहल्ला के अल्फाज से। तो समा वजहल्ला के अल्फाज इसलिए बोले कि जहाँ भी तुम रुख करोगे अल्लाह उधर हैं। तो मशरक़ और मगरब की बहस नहीं है अल्लाह के जहन में, यानी जो माफ़ी चाहता हूँ, कुरान मजीद का जो पैगाम वो ये है कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करना है। उनका जहन यह था कि मशरक़ की तरफ करना है या मगरब की तरफ करना है, ये वो बहस है जिसकी वजह से उनको एक मुश्किल पेश आ रही थी। और किस्मत की बात कही है, या जब यहूद शुरू में आए होंगे तो यहूद ने आकर बैतुल मक़दसी को किबला बनाया हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मगरब किबला बन गया हुआ था, ना कि बैतुल मक़दस, ये वाज़ेह रहना चाहिए। इस बैकग्राउंड में ये बात चल रही है। तो वो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो कहें कि भाई मशरक़ और मगरब को छोड़कर हम किसी घर की तरफ रुख करें, क्योंकि घर तो बड़ी छोटी सी महदूद चीज़ है ना। अब मिसाल के तौर पर हमें भी कहा जाए कि भाई ये घर अल्लाह का है, इसमें तो क्या खुदा मौजूद है वहाँ पर कि हमने उसकी तरफ मुँह करना है। अभी भी एतराज़ होते हैं कि मुसलमान भी पत्थर पूछते हैं, नौज़बिल्लाह हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन वो बैतुल्लाह के साथ ये सवालात पैदा उनके जहन में थे, इसलिए इन सवालात की वजह से वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि मशरक़ और मगरब को छोड़कर हम अल्लाह के घर की तरफ रुख करें, यानी बैतुल हराम की तरफ, ये उनके लिए मुश्किल थी। इसलिए पीछे बात चल गई थी कि वो तुम्हारा किबला नहीं मानेंगे, आप उनका किबला नहीं मानेंगे, और एक दूसरे का किबला भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी भारी बात, इसको अल्लाह ने तस्लीम भी किया कि ये भारी बात है, लेकिन उनके लिए नहीं जो अल्लाह से डरने वाले। अब इस बैकग्राउंड में देखिए आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वाले कुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। हर एक की एक सिमत है तो उसको उसी की तरफ फिरना है। पहले क्या था, यहूद के लिए मगरब, नसारा के लिए मशरक, ये था। मुसलमान भी मगरबी की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ रहे थे उनके ख्याल में, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस के तरफ मुँह करके पढ़ रहे थे, लेकिन उनके ख्याल में था कि मगरब की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, हर एक की सिमत अलग होगी, ठीक है। किसी को, यानी खाना कावा बीच में है, तो कोई मशरक की तरफ मुँह कर रहा है, कोई मगरब की तरफ कर रहा है, कोई शमाल की तरफ, कोई जनूब की तरफ, ऐसा ही है ना, हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जो मक्का में चले जाएँ तो हमें तो हज का अगर सीन नज़र ना आए तो शायद हम भी इतना सोच रहे हैं, मुश्किल महसूस करें, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ सफ़ें बनी होती हैं। तो एक ही मस्जिद में किसी की सिमत एक नहीं है, एक ही मस्जिद में हर एक का थोड़ा थोड़ा जाविये का फ़र्क पड़ता चला जा रहा है। तो अब हर एक की एक सिमत है जिसकी तरफ उसने मुँह करना है, नए हुक्म का यह तकाजा था। इसलिए फरमाया कि वो सिमात की परस्तिश को छोड़ दो, नेकी की तरफ आगे बढ़ो, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। तो इससे ना घबराओ कि सिमत की तरफ मुंह करना है कि बैतुल के असल में अल्लाह ने हुक्म दे दिया बैतुल्लाह की तरफ रुख करना है, तो उस तरफ रुख करो। फस्ता बिकुल खैरात, तो नेकियों में आगे बढ़ो। ये मैं ताबीर नहीं कर रहा हूँ, पुराने तसव्वुर के मुताबिक जो पहले तफसीरें मौजूद हैं उसके मुताबिक यह है कि यहूद के लिए अलग क़िबला था, नसारा के लिए अलग था, और मुसलमानों के लिए अब अलग हो गया है। तो सब ने अपनी अपनी सिमत पर ही रुख करना है, तो इनको छोड़िए, आप नेकी की तरफ बढ़िए। एक तफसीर ये है जो अमूमी तौर पर मानी जाती है। तो बहरहाल मैंने दोनों बयान कर दी ताकि जिस पर आपका इत्मीनान हो वो आप समझ लें। तो दो बातें मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, हर एक की अपनी अपनी सिमत होगी अब नए हुक्म के मुताबिक जो दीन इब्राहिमी में पहले से चला आ रहा था। तो चूंकि यहूदों ने सारा पेश नज़र है, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि अब नए हुक्म के मुताबिक बैतुल्ला की तरफ रुख करना है। तो हर एक की अपनी अपनी जहत होगी, इसलिए घबराओ नहीं और नेकियों की तरफ आगे बढ़ो। दूसरी तफसीर यह है कि इन कौमों की, यहूद नसारा और मुसलमानों की, हर एक की अपनी अपनी जहत है, अपनी अपनी सिमत है। तो इन्होंने तो अपने मुँह करना है अपनी तरफ, आप इनको छोड़िए और नेकी इख्तियार कीजिए आप। तो मेरे ख्याल में ये जुमला नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं उसको दूसरे मानी दे रहा हूँ, क्योंकि आगे फरमाया ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया, तुम जहाँ भी होगे अल्लाह ताला तुम सबको ऊपर काबू रखता है, तुम उसके गिरफ्त से नहीं निकल सकते हो। मतलब ये कि तुम मशरक में मुँह करके नमाज़ पढ़ लो, मगरब में मुँह करके नमाज़ पढ़ लो, कोई मसला नहीं। अल्लाह को इकट्ठा करने में क्या मसला है, अमाल को कबूल करने में क्या मसला है, तुम्हें लाकर जन्नत और दोजख में डालने में क्या मसला है, उसका कोई मसला नहीं है। तो इसलिए सिमात की तरफ ना चल जाओ, नेकी की तरफ आगे बढ़ो। तो नेकी और तकवा इख्तियार करो, जो करने का असल में काम है। अगर नेकी और तकवा तुम इख्तियार नहीं कर रहे हो तो फिर सिमतें कोई चीज़ नहीं रखती, कोई मानी नहीं है उसके। तो सिमात की बजाय तुमने रुख करना है बैतुल हराम की तरफ, जिसको मस्जिद हराम कुरान ने कहा है। इन अल्लाह अला कुल्ल शाइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। तुम जहाँ भी होगे, जिस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है। तो इसलिए अल्लाह के घर में ये मसला नहीं है कि सिमत कोई हो, कोई तयशुदा डायरेक्शन हो जिसमें हम काम नमाज पढ़ें, और कोई जगह मुकर्रर हो, कोई इस तरह की, ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ भी होगे वो तुम्हारे अमाल को कबूल करेगा और तुम्हें भी पकड़ बुलाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। इन अल्लाह अला कुल्ल शाइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब ये ज़ाहिर है कि जो तरद्दुद था अहले किताब के दिलों में, उसको अल्लाह ताला ने ज़ाइल किया है, और मुखातब मुसलसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने अहले किताब को यहाँ मुखातब नहीं बनाया, क्योंकि उनके लिए बड़ा ग्रां हुक्म था, जैसे अल्लाह ने बयान भी किया है। तो उनके लिए तकलीफ़ दे बात थी कि किबला तब्दील हो रहा है, अब सिमत एक मशरक की तरफ या मगरब की तरफ मुंह नहीं करना, बल्कि हमने एक घर की तरफ मुंह करना है जिसमें सिमत बदलती रहेगी, कोई मशरक में, कोई मगरब में, कोई शमाल में, कोई जनूब में। तो उनके लिए ये गरानी का बायस था, इसलिए बराए रास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप जिधर भी हों आपने खाना काबा की तरफ रुख करना। और बस अब बजाय इसके कि डायरेक्शन में बहस करें, बस नेकी की तरफ आगे बढ़ें। नेकी कब होती है, जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम होता है। ये इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। नेकी दो तरह की है, एक वो नेकियाँ हैं जो हमारी फितरत में वदियत की गई हैं, उनको पहचानने में मेरे और आपके पास पहले ही से इल्म मौजूद है, हमारी तमाम तहजीबें उसी पर खड़ी हैं। हमारे यहाँ जितने भी आप देखिए कि पूरी दुनिया में कहीं भी सच बोलने की सजा नहीं है, झूठ बोलने की होती है। कहीं भी किसी को ज़िंदगी देने की सज़ा नहीं है, कत्ल करने की सज़ा होती है। तो वो हमारी फितरत में वदियत है ये चीज़ें। तो वहाँ हमें नेकी और बदी का पता है, लेकिन कुछ नेकियाँ ऐसी होती हैं जो अल्लाह के बताने से वाज़े होती हैं। मसलन अल्लाह की इबादत करना हम सारे ही चाहते हैं, तमाम अदियान ने कोई ना कोई तरीके निकाले, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे कौन सी इबादत पसंद है वो उसने हमें बता दी। तो अब नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, ये अल्लाह की पसंदीदा इबादत है। तो अब ये नेकी, नमाज नेकी बनी है अल्लाह के बताने से, वो मैं अपनी फितरत से नहीं ईजाद कर सकता था। तो यूँ समझ लीजिए कि किसी नेकी का तरीक़ाकार वो अल्लाह ताला बता देते हैं कि भाई इस तरह से करो, नमाज इस तरह से पढ़ लो, ज़कात इस तरह से देनी है। तो मुझे तो अपने माल में से कितने पैसे देने हैं तसल्ली नहीं होगी, कभी कम देकर मैं डंडी मार लूँगा, कभी ज़्यादा देने का जज्बा पैदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने बताया कि भाई इतना तो तुम दे दो तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी अदा हो जाएगी। तो नेकी का ये तसव्वुर कि खुदा के कहने से कोई चीज़ नेकी का बायस बनती है, ये भी एक नेकी है। खुदा के हुक्म को मानना खा वो कितना ही नागवार लग रहा हो, वो भी नेकी है। तो इसलिए फरमाया गया फस्तबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ आगे बढ़ो, यानी इस वक्त अल्लाह का हुक्म आ गया है तो उसको इख्तियार करो। तुम्हें जो अकली तौर पर लग रहा है कि सिमत होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, बस मेरे हुक्म की पैरवी करो। तुम जहाँ भी होगे, जिस सिमत में होगे, कोई मसला नहीं होगा, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उनको कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती, ना सिमतें, ना जहतें, ना जगहें, ना मकामात, ना कोई गारें, ना कोई पहाड़, ना कोई पत्थर, उनके लिए कोई रुकावट नहीं बनते। तो इसलिए हर एक को अपने रुख पर मुंह फेर लेना है जहाँ भी बैतुल हराम सामने आ जाए। अब इसी गरज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तसल्ली दिला रहे हैं अल्लाह ताला। तसल्ली दिलाने के बाद जो पहला हुक्म दिया है वो यही दिया है कि मैं नहीं सुखरज तफवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, आप जहाँ से भी रवाना हों, जहाँ से भी आप निकलें, आपने अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ कर लेना। अब ये उस बात को समझाने के लिए है कि खाना काबा में, खाना काबा की तरफ रुख करने के लिए अब सिमत की बात नहीं होगी, जहाँ से भी आप निकलें तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करना, जहाँ से भी आप नमाज के लिए निकलें। वा इन्नहु लल्हक मिन रब्बिक, अब यही बात, यकीनन यही बात हक है तुम्हारे रब की तरफ से, इस बहस में अब नहीं पढ़ना। वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और जो कुछ तुम करोगे अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि अब जो मैं हुक्म दे रहा हूँ इसमें जो एतराज़ात हैं, जो जहनों में खलजान हैं, वो कायम रहेगा, उसको आसानी से ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सदियों का एक अमल है, लोगों का वो वहाँ रह रहे हैं तो उनके जहनों में ये उलझन सी है, खलश सी है। इसके बावजूद अब आपने काम क्या करना है कि आपकी वजह से, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये अमल कायम होना है, इसलिए आप ही को मुखातब किया गया है कि अब आप जहाँ से भी निकलें आपने मस्जिद हराम की तरफ मुँह करना है, क्योंकि आपके वजूद से नई शरीयत वजूद में आएगी। पुराना जो तसव्वुर चला रहा था इनके यहाँ, अहले किताब के यहाँ, वो ख़त्म हो जाएगा, मशरक़ और मगरब किबला नहीं रहेंगे, अब किबला बन जाएगा मस्जिद हराम। तो इसलिए आप जहाँ भी हों आपने चेहरा इस तरफ करना है, और अगर आप इसमें कुछ नरमी करेंगे, गलती करेंगे, कुछ रुख्सत लेने की कोशिश करेंगे, तो जान लीजिए कि जो कुछ तुम लोग करोगे अल्लाह उससे वाकिफ़ है। हुक्म नबी अकरम सल्लम को दिया, गफलत लोगों की जरिए बहस आ गई है। उसकी वजह यह है कि नबी अकरम सल्लम को तो पहले ही अल्लाह ताला ने बताया कि वो तो यही चाहते थे कि यही किबला बने, आपको तो कोई झिझक नहीं थी, लेकिन जो मानने वाले मदीना में ईमान लाए थे उनके लिए झिझक का बायस था, मक्का वालों के लिए भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही उसी को किबला बनाए हुए थे। अब ये बात अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कह दी कि देखो तुम्हारे लिए अब किबला ये बन गया है, इसमें तुमने अपनी अपनी जहत की तरफ रुख करना है, जहाँ से भी तुम निकलो मस्जिद हराम ही की तरफ रुख करना है। ये मुकम्मल हुक्म है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इस हुक्म को दोहराया है ताकि जो फॉलोअर्स हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन पर फिर बात वाज़े हो जाए, और आगे जो दो तीन बातें कही हैं उनका इश्तबा, उनको हिकमत बताने के लिए। तो दो दफ़ा पहले एक हुक्म आ चुका है कि जब आपको कहा कि आप चाहते थे जिस किबले को हम उसकी तरफ आपका रुख कर रहे हैं, तो अब आप जहाँ भी हों इस तरफ रुख करना है। फिर अब तसल्ली देते हुए ये बताया कि देखिए आप इस बात से निकल जाइए कि किधर रुख करना है, मशरक या मगरब, अब आपने मस्जिद हराम की तरफ रुख करना है, तो जहाँ से भी आप निकलें यही रुख करना है। तो उम्मत को आपने ये उसवा कायम करके सुन्नत कायम कर देनी है अपने अमल से, ताकि उनके अंदर यह हौसला पैदा हो और वो कोई गफलत ना करें इस मामले में। आगे फिर हुक्म दोहराया है, उस हुक्म को दोहराते हुए यहाँ ये हिकमत बताई कि ताकि तुम्हारा इत्मीनान हो जाए और कोई गफलत ना हो इस मसले में। दोबारा हुक्म दोहराया है, पहले नबी सल्लम से ही आगाज़ किया है, फिर उम्मत को भी साथ शामिल किया है, लेकिन उसकी वजह बताई हैं। बताया कि तुम जहाँ से भी निकलो, मैं नहीं सुखरजता फवल्ली वछा कशतर मस्जिद हराम, तुम मस्जिद हराम की तरफ रुख करो, और तुम लोग, हम मुसलमानों को मुखातिब किया है, तुम लोग जहाँ भी हो अपने चेहरे को उसी की सिमत कर लो, ताकि ले अल्लाह यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जा, ताकि लोग तुम्हारा मजाक ना उड़ा सकें, तुम्हारे अमल में कोताही ना बता सकें, तुम्हें यह ना कह सकें कि तुम दीन इब्राहिमी पर नहीं हो, तुम्हें यह ना कह सकें कि तुम क्या करते हो, किस तरफ रुख करते हो, और तुम्हारे बारे में ये ख्याल ना हो कि तुम अल्लाह के रसूल के गवाह नहीं हो। पीछे जो बात गुजर चुकी है उसकी तरफ इशारा है। याद होगा ये आयत जो थी, आयत नंबर 143 है, इसमें यह फरमाया गया है कि हमने इसी मकसद के लिए, किबले की तब्दीली के लिए या इस तरह की चीज़ों की इस्लाह के लिए तुम्हें उम्मत बनाया है, उम्मत वसत, ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। अब उस मकसद के लिए यहाँ बताया कि तुम चूँकि अल्लाह के रसूल के नुमाइंदा होने की वजह से लोगों पर गवाह बनाए गए हो, तो अगर तुम कमज़ोर हो गए तो दीन कमज़ोर हो जाएगा, तो तुम्हारे खिलाफ़ कोई हुज्जत नहीं होनी चाहिए लोगों के पास कि ये क्या बात है जी, इसका क्या सबूत है, ये कहाँ से लिया है इन्होंने किबला, ये क्यों इस किबले की तरफ मुँह कर रहे हैं, देखो जी कल ये कर रहे थे आज वो कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जो रसूल के नुमाइंदा हैं उनको इस मसले में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। आगे फरमाया कि इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, हाँ जो यहूद में से बातें तो बनाएंगे, जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं। मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दलील सुनकर चुप कर जाते हैं, हक को देखकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन कुछ शरारती किस्म के लोग होते हैं वो बातें बनाएंगे अभी भी, तो उनका तो मुंह बंद करना पेश नज़र नहीं है। असल चीज़ यह है कि तुम्हारे अमल में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फला तख्शौहुम वख्शौनी, तो तुम इनसे ना डरो मुझसे डरो, तो इसलिए किबला तब्दील कर लो। अब जो पीछे बात चली आ रही थी, जो जिसकी वजह से अल्लाह ताला इतना ताकीद कर रहे थे, उसकी वजह यह थी कि सहाबा के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका ख्याल था कि वो आखर उलमा हैं, अहले किताब हैं, तो रात उनके पास है, तो वो हो सकता है वो सही बात कह रहे हैं, और ये ना हो कि हम किबले की तब्दीली करें और ये हमारे ऊपर हमलावर हो जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें सब कुछ होगा। तो इसलिए फरमाया कि तुम इनसे ना डरो मुझसे डरो, किबले की तब्दीली कर लो, और उसमें कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी है। अगर कमज़ोरी दिखाओगे तो मैं जान लो कि मैं गाफिल नहीं हूँ, और अगर कमज़ोरी करोगे तो ये भी तुम्हारे ऊपर बातें बनाएंगे। वाले उतिम नेमती अलैकुम, और इसलिए मैं ये सख्ती कर रहा हूँ, और इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि किबले की तरफ रुख करना जब जहाँ से भी निकलना, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत मुकम्मल कर दूँ। यानी जितनी अहले किताब ने बातें छुपा रखी हैं, गलत कर रखी हैं, दीन में जो कमी कर रखी है, जो इजाफे कर रखे हैं, उनको साफ करके अपनी नेमत खालसतन मुकम्मल कर दूँ तुम्हारे लिए। उतिम्मा का मतलब दोनों होते हैं, मुकम्मल करना भी होता है और बेऐब कर देना भी होता है, तो दोनों मानी यहाँ मौजूद हैं कि अपनी नेमत को मुकम्मल कर दूँ, खालिस कर दूँ, सही कर दूँ, उसमें कोई कोताही ना रहे। जब आप कहते हैं मैंने काम मुकम्मल कर लिया, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई नक्स नहीं रह गया, अब ये मुकम्मल हो गया मेरी तरफ से। वलअल्लकुम तहतदून, और इसलिए भी ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। तो ये तीन मकासद बताए गए हैं इस हुक्म के अंदर सख्ती करने के। एक ये कि लोगों को तुम्हारे ऊपर कहने की बात मौजूद ना रहे, दूसरा ये कि अल्लाह सही शरीयत देकर अपनी नेमत को मुकम्मल करना चाहते हैं, तो तुम मानोगे, हुक्म को तस्लीम करोगे, तो अगले हुक्म आएंगे और इस हुक्म की भी तामील हो जाएगी। और तीसरा ये कि ताकि तुम हदायत पा जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ। तो किबले के मामले में सीधा रास्ता यही है, जब से दीन इब्राहिमी शुरू हुआ है यही किबला यहाँ पर रहा है। किबले के बारे में ये तो तफसीरी नकात थे, आगे मज़ीद बात चलेगी, लेकिन एक बात अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ कुछ मुहक्किकीन जो इस्लाम के ऊपर काम करते रहते हैं मगरब के, उन्होंने दो तीन थेरीज पेश की किबले के हवाले से। एक ये कि किबला जो है वो बाद में डेवलप हुआ है, नबी अकरीम सल्लम के ज़माने में कोई किबला नहीं था। दूसरी राय ये दी जाती है कि किबला जो है वो पैटरा का इलाका था, बैतरा और पतरा दोनों नाम उर्दू और अरबी में बोले जाते हैं, बैतरा और पतरा, और पैटरा अंग्रेज़ी में। ये अगर मदीने से आप निकलें यरूशलम की तरफ तो रास्ते में आएगा, यानी तकरीबन एक ही सिमत बनती है जो बैतुल मक़दस के थोड़े से ज़ाविया का फ़र्क है, यानी अगर ये बैतुल मक़दस है तो ये थोड़ा सा इस तरह करके वो पैटरा बनेगा। पैटरा पुराना इलाका है जो रूमियों का आबाद करता है, इसमें पत्थरों के अंदर तराशे हुए घर हैं और बड़े ही नफीस किस्म के गोल पत्थरों के गोले से भी पड़े हुए हैं, पता नहीं वो किस वजह से। अब ये तीसरी थ्योरी ये है कि मक्का का जो किबला था ये कुरान मजीद ने मुकर्रर नहीं किया था, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं किया था, बल्कि मक्का का जो किबला बनाया ये हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया। हज्जाज बिन यूसुफी के हवाले से एक और थ्योरी भी दी जाती है कि वो दरमियान में करके आता है, बैतुल मक़दस और बैतुल हराम के दरमियान में करके कहीं उसने बनाया था हज्जाज बिन यूसुफ ने, बाद में वो भी तब्दील होता चला गया। इसकी वजह क्या हुई, ये थ्योरी क्यों दी गई है? ये थ्योरी इसलिए दी गई है कि शुरू के ज़माने की जितनी मस्जिदें हैं उनका किबला ठीक नहीं है, यानी कोई 80 हिजरी तक जितनी मस्जिदें बनी हैं इत्तेफाक की बात है कि उनका किबला या पैटरा की तरफ बनता है या यरूशलम की तरफ बनता है, यानी या बैतुल मक़दस की तरफ बनता है या पैटरा की तरफ बनता है। और कुछ मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनका किबला जो है वो बैतुल मक़दस से लेकर खाना काबा के दरमियान कहीं बनता है, और ये मीलों का फासला है कि अगर मैंने ये मस्जिद इस तरह से डायरेक्शन पे बनाई है तो ये मस्जिद जाके बैतुल्ला और उसके दरमियान में से इसका किबला गुजर जाएगा, ठीक है। और कोई 150 के बाद या 250 के बाद की जो मस्जिदें हैं उनमें कुछ खाना काबा की तरफ करीब होना शुरू हो गया है, और हद ये है कि मुग़लों के ज़माने की बनी हुई मस्जिदें भी ऐसी हैं। तो और जो अफ्रीका की मस्जिदें हैं उनका तो और भी मामला ख़राब है, वो कुछ इस तरह से है कि वो ना खाना काबा की तरफ आती हैं ना वो बैतुल मक़दस की तरफ जाती हैं, वो कोई सूडान की तरफ उनका रुख बनता है सारी की सारी। अब ये मस्जिदों की ये सूरत हाल देख कर उन्होंने कहा जी कि जो पुरानी मस्जिदें हैं 80 हिजरी से पहले पहले उनका किबला जो बनेगा वो तो पैटरा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूरी थ्योरी कायम की कि पैटरा ही दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज था, उसी में आप पैदा हुए थे, उसी को आपने मरकज बना दिया था। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, पुराने जो अरब थे वो किबले का था, पुरानी कौमें खुद हज़रत ईसा की हज़रत मूसा की कौम को देख रहे तो उनको सफ़र में किबला बनाने के लिए बैतुल मक़दस की तरफ या खाना काबा की तरफ रुख करने का हुक्म नहीं था, क्योंकि मुमकिन नहीं था। मसलन आज हमारे पास अगर गूगल वगैरह ना हो या मोबाइल में ये ऐप्स ना हो तो ज़रा किबले का रुख मुतय्यन करें, किसी अपने ही मुल्क में बादल आए हुए हों या रात का वक्त हो। तो पुराने लोग सितारों के ज़रिए से किबले मुतय्यन करते थे या सूरज के डूबने और चढ़ने से कुछ कैलकुलेशंस करते थे, उसकी वजह से जो भी रुख तय कर लेते थे बन जाता था, ठीक है। तो ये अब मुसलमानों ने पूरी कोशिश की है कि अपना किबला सही रखें, लेकिन उस ज़माने में जो उलूम थे उनकी मदद से उन्होंने किया। उसमें गलतियाँ हुई। हमारी बादशाह मस्जिद आज भी जाकर देख लें तो उसका किबला दुरुस्त नहीं। तो बादशाह मस्जिद क्या, हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद बनी उसका किबला दुरुस्त नहीं था, बस वो बना दिया अंदाजे से, और अच्छा खासा कोई 6-7 डिग्री का फ़र्क था। तो ये कुछ कोताहियाँ होती हैं, कुछ अंदाजे होते हैं, कुछ जो ज़माने के उलूम थे। तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता चला गया है। तो कुरान मजीद वाज़ेह है कि बैतुल हराम ही हमारा किबला है, और कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में मक्का का लफ्ज़ बोला हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह घर मक्का में बनाया था, जो मक्का का पुराना नाम है। पेट्रा का नाम कभी मक्का नहीं रहा, ये वाज़ेह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी पेट्रा में नहीं रहे। खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं कि मैं उस बस्ती में अपने बच्चों को आबाद कर रहा हूँ जहाँ पर पौधे वगैरह नहीं हैं, तो ये पेट्रा पर नहीं आता, क्योंकि पेट्रा एक ज़रख़ेज़ इलाका था। तो इसलिए ये जो सारी बहसें थी मैंने इसलिए कर दिया कि आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो सवालात भी मुझसे चूँकि होते रहते हैं इस तरह के, तो इसलिए मैंने पूरी बहस कर दी कि ये मुसलमानों ने जो उनके पास सलूम थे उनके तहत इसको मुतय्यन किया था। आज तक हमारे किबले दुरुस्त नहीं हैं क्योंकि हमारे पास अलूम की कमी थी या ऐसे टूल्स की कमी थी कि हम किबला अपना सही मुतय्यन नहीं कर पाते थे। अभी भी आप देखिए कि मोबाइल में जो ऐप्स होती हैं, जो अच्छी ऐप्स हैं, उसमें लिखा होगा अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन यही किबला है आपका। तो आज भी ये मसला होता है कि हम पूरी तरह से एक्यूरेट तरीके से शायद ना पहुँचते हों। तो ये वो जगह है जिस पर वाज़ेह रहना चाहिए। इसमें हमारे उलूम की या उन टूल्स की कोताही थी जो हमें मुयस्सर थे कि हमने किबला कैसे बनाना है। तो जो रुख एक मुतय्यन बनता चला गया, जो सितारों के उस तामुल से या सूरज के तामुल से होता है। अभी भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जून को बिल्कुल सूरज 27 जून को गालबन सूरज बिल्कुल खाना काबा के ऊपर होता है, तो होता तो हमारे सरों पर भी है। तो इस वजह से अब वो सूरज की तरफ कर लें, कितना कर लेंगे, कैसा कर लेंगे, कितना सही होगा, क्या ठीक टाइम पे आपने किया है, तो एक घंटा लेट हो जाए तो किबला ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से पुराने ज़माने में किबले का तयन होता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रा कभी हमारा किबला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यरूशलम कभी हमारा लोगों ने उसको किबला बनाया था। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बनाया था और वो कुरान ने बयान कर दिया है, उसकी हकीकत का हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन पेट्रा कभी भी नहीं रहा। और मक्का और बैतुल मक़दस के दरमियान जितनी जगह हैं वो भी कभी किबला नहीं रहा, ना हज्जाज बिन यूसुफ ने कभी ऐसा किया है। हज्जाज बिन यूसुफ को भी बहुत बदनाम किया जाता है, हो सकता है क़यामत में जाकर पता चले बड़ा शरीफ आदमी था। तो ये अब किबले की बहस है जो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। मैं दोहरा देता हूँ बात को ताकि बात वाज़ेह हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने चलती आई हुई शरीयत के मुताबिक बैतुल मक़दस की तरफ रुख किया, जो मदीना में तकरीबन मगरब की तरफ पड़ता था और मक्का मदीना में मशरक़ की तरफ था। ठीक है, यहूद मगरब को किबला बनाते थे और नसारा मशरक को किबला बनाते थे, लेकिन जब खाना काबा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया तो ये यहूद के लिए दो वजह से और नसारा के लिए एक वजह से काबिल कबूल नहीं था। यहूद के लिए इसलिए दो वजह से कि एक बैतुल मक़दस से अलग हो रहा है किबला, और दूसरा इस वजह से कि वो मगरब की बजाय कोई सिमत नहीं रहेगी उसकी। अब जो किबला है हमारा मुसलमानों का उसकी कोई सिमत नहीं है, तो इसलिए अहले किताब में से यहूद को दो वजह से मुश्किल पेश आ रही थी कि बैतुल मक़दस से हटाया जा रहा है और मशरक से भी हटाया जा रहा है जो कि उनके ख्याल में किबला था, और नसारा को इस वजह से थी कि उनका जो किबला है वो मगरब था और मगरब से उनको हटाया जाएगा। नसारा के किबले की जो वजह ज़्यादा मरूफ है वो ये है कि उनका ख्याल है कि ईसा अलैहिस्सलाम मशरक से नमूदार होंगे और जो दोबारा उनका नज़ूल होना है, तो इस वजह से वो उस इंतज़ार में मशरक की तरफ रुख करते हैं। अब ये पूरी बात थी, मशरक और मगरब को एक तरह का तकद्दस हासिल था दोनों कौमों के यहाँ कि मगरब को यहूद के यहाँ तकद्दस हासिल था कि ये अल्लाह की डायरेक्शन है, और नसारा के यहाँ मशरक़ को तकद्दस हासिल था कि वो हज़रत ईसा के वरूद की जगह है, दोबारा नज़ूल की, या अल्लाह ताला की वो सिमत है। अल्लाह ताला ने इसकी नफ़ी की और बताया कि नहीं, मेरे लिए कोई सिमत मुकर्रर नहीं है। जहाँ भी तुम मशरक़ की तरफ रुख कर लो, मगरब की तरफ रुख कर लो, फसम्मा वजहुल्लाह, वही अल्लाह की सिमत है, वही अल्लाह का रुख है, उसमें कोई रुकावट की बात नहीं है। इसलिए अब इस बहस को छोड़ो, और जो किबला असल में किबला है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में जो अल्लाह ने मुकर्रर किया था, वो बैतुल्लाहिल हराम है, जिसमें जिसकी तरफ अब रुख किया जाएगा। इसके लिए फिर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तसल्ली दिलाई गई, पूरा मुसलमानों को तसल्ली दिलाई गई, अहले किताब को तसल्ली दिलाई गई कि असल किबला यही है। इसलिए आप जहाँ भी हों, जिस जगह से आप निकलें, जहाँ से आप रवाना हों, जिस जगह आप मौजूद हों, तो अब आपने मशरक़ और मगरब की तरफ मुँह नहीं करना, बल्कि मस्जिद हराम की तरफ मुँह करना है। याद रखिए कि मस्जिद हराम किबला है, मक्का नहीं, ये वाज रहना चाहिए। इससे भी बड़ी गलत फहमियाँ होती हैं कि मक्का किबला है, नहीं, मस्जिद हराम है। और मस्जिद हराम से मुराद खाना काबा भी हो सकता है, लेकिन उसमें वसत रखी गई है ताकि पुराने ज़माने में जो गलतियाँ होती थीं और आज भी जो हो सकती हैं, उस पर गिरफ्त ना हो सके। क्योंकि इंसानों के पास कभी भी ऐसा परफेक्ट इल्म नहीं रहा आज के ज़माने से पहले कि वो किबले का सही सही तायुन कर सकते हैं। तो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो सफ़र में इसकी रुख्सत दी गई थी, और अपने दूर के इलाकों में जहाँ रहते थे वहाँ भी रुख्सत दी गई थी। सिर्फ खाना काबा के पास आकर या मस्जिद हराम के पास आकर किबले की पाबंदी का हुक्म था। जब दूर चले जाएं, किसी और इलाके में चले जाएं, तो फिर इसका हुक्म नहीं था, लाजम नहीं था। कोई कर ले तलाश करके, कोई अंदाजे लगा कर, तो फिर हो सकता है। सफ़र भी ऐसे ही करते थे, वो सितारों को देखते हुए सफ़र करते थे, या सूरज और मगरब और मशरक़ का ध्यान करते हुए सफ़र करते थे। तो आप यहाँ से निकलें, हमारे अलमौरत से, और अपने घर चले जाएं, या किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ आपको किबला मालूम ना हो, तो अलमौरत का अंदाज़ा लगा करके, अलमौरत में किबला इस रुख तर अब किस रुख पे होगा, आप नहीं कर सकते, नामुमकिन सी बात है। तो इसलिए ये ना समझिए कि सफ़र करते हुए निशान लगाते जाएंगे किबला किधर है, नहीं मुमकिन है। ज़रा सी सिमत बदल जाएगी तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पुराने ज़माने में ये एक नरम हुक्म था, सख्त हुक्म नहीं था। लेकिन नबी अकरीम सल्लम के बाद, चूँकि अल्लाह को मालूम था कि अब ऐसे उलूम तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, और मुसलमानों ने भी कोई कोताही नहीं की, उन्होंने पूरी मेहनत से जो भी उनके पास ज़राए थे उनके तहत करते रहे। या आज भी हमारे साथ होगा कि हम सफ़र में जा रहे हैं तो किबला तायुन करेंगे अंदाजे से, पूरी तहकीक से, गलत हो जाए तब भी अल्लाह ताला कबूल करते हैं, क्योंकि हमने रुख अपनी तरफ से, अपनी नीयत में, अपने इरादे में मस्जिद हराम की तरफ किया था, तो नमाज़ हमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से, हाँ, अलबत्ता अब जब हमारे पास ये उलूम आ गए हैं तो अपनी मस्जिदें ठीक कर लेनी चाहिए। गालिबन कुछ मुसलमानों ने की भी हैं, लेकिन कोई 50 के करीब मस्जिदें ऐसी हैं जो आज भी गलत रुख पर हैं, तो उनको बस ठीक कर लेना चाहिए। वो जाके तारीखी मस्जिदें हैं, तो उनमें जिस तरह हमने अपनी मस्जिद में सफ़ टेढ़ी बिछानी शुरू कर दी, वहाँ कम अज़ कम सफ़ें टेढ़ी कर लेनी चाहिए ताकि किबला ठीक हो जाए। इसी मौजू पर इंशाल्लाह अगली दफ़ा बात करेंगे, मज़ीद आगे चल रहा है। लेकिन इतनी बात कह दूँ कि ये नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई ही इसलिए थी कि पुराना जो दीन चला रहा था उसमें जो मिलावटें कर दी गई थीं, जो आलाइशें डाल दी गई थीं, जो किताबुल्लाह जो दोनों थीं, तौरात और इंजील, उसमें जो तहरीफात कर दी गई थी, उनकी दुरुस्ती के लिए आप आए थे। और उन चीज़ों का आगाज़, उनकी इस्लाह का आगाज़ इन्हीं आयात से हुआ है। इसलिए यहाँ पर पूरे ज़ोर के साथ ये बात भी बताई गई कि तुम जो हो वो शहदा अलन्नासो, इसलिए तुम्हें पूरी तरह से इसको मज़बूती से थामना है। और अब आगे जो आयतें आएंगी उसमें ये बताया गया कि इसी मकसद के लिए तो इस रसूल को भेजा गया था, और उसी दुआ का हवाला दिया गया जो पीछे बैतुल्लाह की तामीर के वक्त इस्माइल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। तो इससे ये बात वाज़े करना पेश नज़र है कि अल्लाह के दीन में जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं उनकी इस्लाह छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत अहमियत का काम है। इसलिए रसूल की बेइज्जत का एक बड़ा मकसद ये था, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का, कि इन चीज़ों की इस्लाह करनी है, उनको खालिस करना है, तो वाले उतिम्मा नेमती में जो बात कही गई है उसके लिए ये बेइज्जत की गई थी नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। तो आपने अपने वजूद से ना सिर्फ ये कि एक शानदार मिल्लत को दोबारा ज़िंदा किया बल्कि जो खराबियां पैदा हो चुकी थी उनकी इस्लाह की। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आपके चले जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने भी वही काम करने शुरू कर दिए जो यहूद नसारा करते थे। तो हमें वापस कुरान और सुन्नत नबवी की तरफ आना है, वगरना हमारा मामला भी वही होगा जो यहाँ यहूद का बताया गया। तो वक्त हो चुका है जी, वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।